बहुत सुंदर विषय को हम लेकर के इस पर शेयरिंग करने वाले हैं। वो थीम है डेवलपिंग रेजिलियंस टू फेस चैलेंजेस। तो हमारे जीवन में जो चुनौतियां आए हैं उनको दूर करने की क्या युक्ति है और क्या समझ है या ज्ञान है, तो इसके लिए मैं आमंत्रण करना चाहती हूँ अपने सीनियर राज्यों की ब्रदर आदरणीय बीके सूरज भाई जी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर राजाराव पगड़ीपली चेयरमैन विश्व ह्यूमैनिटी यूनाइटेड इंटरनेशनल काउंसिल हैदराबाद कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ वीर कुंवर यूनिवर्सिटी बिहार, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप भी स्टेज पर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आदरणीय पीके शशि दीदी जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग भोपाल, तो आपको भी हम निमंत्रण करते हैं कि अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। ये सुंदर जो विषय है ये देखा जाए तो रेजिलियंस का अर्थ क्या होता है, तो अगर यहाँ पर आप हमारे गेस्ट हैं तो कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्राचार्य सूरज भाई जी, प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो नित्य जीवन में हम जो चुनौतियों को फेस करते हैं तो कैसे उसको फेस करके बाउंस बैक करें अपनी निज स्थिति या अपनी मनोस्थिति कर, तो इसके लिए आज हम बहुत इस सुंदर विषय पर बहुत सुंदर विचारों का लेन देन करेंगे। और लेन देन के साथ साथ ये सिर्फ समझ नहीं है या शेयरिंग नहीं है, लेकिन ये एक टेक अवे है, हमारे जीवन में एक समझ है जो हम रोजमर्रा जीवन में प्रैक्टिस या अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है रेजिलियंस क्या है। जैसे हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल देंगे कि आपके हाथ में अगर इलास्टिक है तो आप जितना खींचेंगे एक लिमिट होता है और लिमिट के बाद वो अपना अपने स्थिति पर आ जाता है, तो लिमिट क्रॉस करने के बाद वो टूट जाता है। तो ऐसे ही तो मनोविज्ञान या आध्यात्मिकता क्या कहता है कि हर मानव के अंदर कुछ लिमिट है, इस हद तक हम सहन कर सकते हैं, इस हद तक हम ये कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन अगर हम ज्ञान की रीति या आध्यात्मिक तौर पर हम सोचेंगे तो एक पॉइंट होता है जिस पर हम समझ करके रियलाइज करके वापस बाउंस कर सकते हैं, वापस अपनी स्थिति पर आ सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य है हम समझते हैं ये मेंटल तौर पर इमोशनल बिहेवियर तौर पर हमको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत एडजस्ट भी करना होता है, अंदर और बाहर बहुत एडजस्ट करना होता है। तो जब ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे अंदर एडजस्टमेंट की शक्ति है तो हम समझते हैं तो कोई भी चैलेंज को हम फेस करके वापस अपनी स्थिति पर बाउंस बैक कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि कल और आज हम बहुत जोरदार बारिश में हम सब किए हैं, एडजस्ट किए हैं, लेकिन शुरुआत में हमें ये लगा कि ये बहुत ही अचानक आ गया, हम प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हमें सूचित भी नहीं किया गया, ये नहीं किया, तो ऐसे कैसे संकल्प आए। लेकिन होते होते हमने देखा कि कितना अच्छा ये चैलेंज को हमने फेस किया और वापस बाउंस बैक हुए। जहाँ चांस मिला हमने छाता मांग ले लिए और जहाँ चांस मिला हम गाड़ियों में आना जाना करते। और ये जो है ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हम एडजस्ट करके वापस आ गए, हालांकि उसी स्थिति में हम नहीं है कि ये क्यों हो गया या अचानक कैसे हो गया, इतना जोरदार बारिश होगा। तो सिंपल एग्जांपल उदाहरण के साथ हम और आगे बढ़ेंगे और बहुत ही गुह्य और गहन इस पर सोच विचार जो किए हैं या विचार सागर मंथन किए हैं उनका भी हम विचार सुनेंगे। अगर हमारे आदरणीय सूरज भाई जी उपस्थित हैं तो हम उनको निवेदन करते हैं कि मंच पर आ जाए। तो उससे पहले हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है प्रोफेसर देवी प्रसाद जी तो भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जो वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं तिलक और फूलों के साथ। तो तिलक सिंबलाइजेस हमारी विक्ट्री है, हमारा विजय है या हमारी उपस्थिति उस समय पर है ही। और बुके जो कलरफुल है तो हमारे गुणों को प्रतीक करता है। तो हम निवेदन करते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि हमारे आदरणीय गेस्ट को फूल और तिलक से स्वागत करें, बैट से स्वागत करें। स्वागत हो और स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय सूरज भाई जी आए हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है और स्वागत है। सुंदर विषय पर और गहन और गुह्यता पर प्रकाश डालने के लिए हम सबके समक्ष आदरणीय सूरज भाई जी हैं। सूरज भाई जी का बहुत सुंदर हम परिचय सुनते आए हैं और परिचय सुनना भी चाहिए हमें लगता है। बहुत प्यार से सुनेंगे। तो आदरणीय सूरज भाई जी का जीवन अपने नाम की गरिमा के अनुरूप है। तो वो विज्ञान से स्नातक हैं, ईश्वरीय ज्ञान उन्हें 1964 में मिला जब हमारे साकार फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे, उनके अंग संग्रह बहुत सुंदर अनुभव लिए हैं, ईश्वरीय कार्य अर्थ अपना जीवन समर्पित किए 1968 में। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर माउंट आबू में वरिष्ठ राजयोग की शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क के बहुत ही आप गाइड हैं, मेंटर हैं। हर स्पार्क विंग के जो भी कॉन्फ्रेंस है या स्पार्क एनुअल मीटिंग में उनका बहुत सुंदर योगदान रहता है, गाइडेंस रहता है। साथ ही आप ब्रह्मा कुमारी इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में खाद्य विभाग के व्यवस्थापक हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों का ब्रह्मा भोजन बनता है, हजारों लोग ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके तृप्त होते हैं। तो ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी, तो पीस ऑफ माइंड में आपका प्रवचन हम सब सुनते रहते हैं। तो इसमें खास जो समाधान प्रोग्राम है बहुत लोकप्रिय है और ब्राथा जी हर समस्या के समाधान सुनाते हुए सबको समाधान स्वरूप में ले आते। तो ब्राथा जी नियमित तो ओम शांति मीडिया में मन की बातों इस पर भी आप बहुत ही अच्छे लेखक लिखे हैं। ब्राथा जी जर्नलिस्ट एवं राइटर भी हैं। तो आप तनाव मुक्त जीवन संकल्प शक्ति का प्रयोग जरा सोचो आके प्रभु मिलन के दिन श्रेष्ठ चिंतन राजयोग अमृत धारा गहन तपस्या आदि इन विषयों पर आपने लिखा है और ये सब किताब प्रकाशित भी हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में अनेक देशों में यात्रा करते हुए तो आपने बहुत ही लोगों को प्रेरणा दिए हैं और उनका लाइफस्टाइल चेंज के लिए आपने बहुत युक्तियां भी बताए, ज्ञान की बातें भी बताएं। तो अब तक आपने देश विदेश में सैकड़ों सेमिनार किए हैं, ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ साथ तो स्पार्क विंग के आप गाइड भी हैं, मेंटर भी हैं। और आज हम आपको इस सुंदर विषय पर डेवलपिंग रेजिलियंस टू फेस चैलेंजेस, तो इस पर प्रकाश डालने के लिए हम विनम्र प्रयत्न करते हैं। थैंक यू।
ओम शांति। आनंद दे रही है बारिश? दे रही है? कष्ट तो हुआ होगा थोड़ा सा, सर्दी तो नहीं है इसलिए कष्ट नहीं होता। सर्दी में जब बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत वातावरण जरा खराब हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है आपसे जिस पर आप चिंतन करेंगे। समस्याएं पावरफुल हैं या हम? वाह, बड़ा सुंदर आवाज आई। ये सत्य है, समस्याएं क्रिएट भी मनुष्य करता है और मनुष्य उससे बहुत पावरफुल है, उन्हें समाप्त भी कर सकता है। हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, कैसे समस्याएं बढ़ती हैं जीवन में और उनके समाधान के लिए हमें अपने में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, अपनी सफलताओं में विश्वास, हमारा जो परम पिता है उसमें विश्वास, अपने श्रेष्ठ भाग्य में विश्वास और अपनी शक्तियों को बढ़ाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। कल हमने आपके सामने थोड़ी चर्चाएं की, उससे ही जुड़ा हुआ आज का टॉपिक हम जोड़ देते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कुछ अलग अलग हो रहा है। एक बहुत सुंदर महावाक्य हमने भगवान के महावाक्यों से लिया, जहां से मैंने शुरू किए थे अपने एक्सपेरिमेंट, पावर ऑफ थॉट का क्या इफेक्ट होता है, उस पर बहुत सारा काम हुआ। जब ये ज्ञान सरोवर बना अब से 28 साल पहले लगभग, बल्कि 30 साल ही हो रहे हैं लगभग, तो यहाँ ये स्पार्क डिपार्टमेंट बना जिसमें हमें रिसर्च करनी थी। और पहला टॉपिक जो मुझे दिया गया वो था मन की शक्तियों का भिन्न भिन्न समस्याओं को समाधान करने में क्या प्रयोग हो। बहुत अच्छे अनुभव रहे सबके, मैं तो केवल बताता था, लेकिन उस टाइम हमारे ग्रुप में 300 लोग थे। उस टाइम यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आए हुए थे, 200 तो लगभग वही थे भिन्न भिन्न देशों के, तो हमने भिन्न भिन्न चीजें उस प्रयोग में रखी। तो एक बहुत सुंदर बात से हमने शुरू किया था, समस्याएं क्या हैं, ये ईश्वरीय महावाक्य आपको सुना रहा हूं, भगवान के वचन। समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। चिंतन करना इस पर। मनुष्य का मन जब कमजोर हो जाता है, बहुत निगेटिव हो जाता है, ज्यादा सोचने लगता है मनुष्य, तब समस्याओं में वृद्धि होती है। कमजोर मन से क्या होता है, कमजोर वाइब्रेशन हमसे फैलते हैं। और जैसे कल हमने चर्चा की, वो प्रकृति से मिलते हैं, रिएक्शन होता है, वो वापिस करती है हमें वही चीज और हमारी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उन्हीं दिनों का है। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इस उदाहरण से और अच्छी तरह जान जाएंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिरोही है और उसकी जेल में हम लोग गए, बहने जाती हैं राखी बांधने कैदियों को। उस दिन थोड़े से ही कैदी थे, 30, तो बहुत समय था। हमने कईयों से पूछा, आप जेल में कैसे आ गए भाई, तो एक जो रो रहा था, 50 साल का व्यक्ति होगा, आबू का ही था, वो हम लोगों को जानता था, यहाँ आता था, पांडव भवन उधर है। उससे पूछा भाई क्यों जेल में आ गए, तो देखो उसने जो कुछ सुनाया एक मिनट में, कि मैं और मेरी पत्नी की खेतों से घर आए थे शाम को, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने उसको कहा जल्दी भोजन बनाओ बहुत भूख लगी है, उसने शुरू कर दिया, मैं 5-7 मिनट के बाद फिर आ गया, बहुत भूख लगी है जल्दी भोजन बनाओ, उसने कहा बना तो रही हूँ भोजन, कोई ऐसा थोड़ा एक मिनट में बन जाएगा, 5-7 मिनट के बाद फिर आ गया, बोलने लगा कुछ कुछ देर कर रही हो मुझे बहुत भूख लगी है, उसे भी गुस्सा आ गया, इसका भी गुस्सा बढ़ गया, और घास काटने वाला वो होता है, उठाया दोनों हाथ उसके काट दिए। आगे आप समझ सकते हैं, कहा मुझे 7 साल की जेल हो गई, मेरी भूख कहाँ गई, बच्चों का भोजन, पत्नी के दोनों हाथ खत्म, मुश्किल से एक जुड़ा है। तो देखिए, एक सेकंड का क्रोध मनुष्य के उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। कमजोर मन था ना, गुस्सा जल्दी आया, सहन नहीं हुई भूख, और बहुत बड़ी समस्या पूरे परिवार के लिए, एक्चुअली उनके जो आसपास का समाज था उन सब के लिए खड़ी हो गई। हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे। दूसरी बात, समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जो समस्याएं अब से 20-25 साल पहले नहीं थी, वो अब उग्र रूप लेती जा रही हैं। आप सबने, कल भी मैंने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, मेरे पास पीछे दिनों में एक एमपी और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए मिलने, घरेलू बात होती है हमारी होमली, मैंने पूछा वकील साहब से कि आजकल सबसे ज्यादा केस कौन से आ रहे हैं, कहा डिवोर्स के, तलाक के। मैंने पूछा कितने आ गए होंगे, कंप्यूटर का युग है सब कैलकुलेट हो सकता है, कहा 1.5 करोड़ हो गए हैं। और हम जानते हैं कि बहुत जल्दी तो न्याय होता नहीं है, न्याय कहीं कहीं होता भी नहीं, गड़बड़ हो जाती है, कितने परिवारों में टेंशन, उसका शरीर पर इफेक्ट, उसका रिलेशनशिप्स पर इफेक्ट, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अब आप सोचो, लड़की घर वापिस आ गई है, उससे कैसा व्यवहार करेंगे उसके भाई और भाभी, सब जानते हैं, समाज में लोग उसको किस नजर से देखेंगे, और उस पर मानसिक इफेक्ट कितना बुरा होगा, उसके जीवन के सारे स्वप्न नष्ट हो गए, जो विजन उसने बनाई थी वो खत्म हो गए, और ये केस कोई हल्के सलके पुरुषों के नहीं है, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां ली हुई हैं, उनके ये सब केस हैं। तो ये समस्या जो अब से 20 साल पहले भारत में बहुत कम थी, मुझे याद है अब से 35 साल पहले एक व्यक्ति यूपी का मेरे पास आया, कहा भाई डिवोर्स हो गया है, मैं समाज में सिर ऊंचा करके नहीं रह पा रहा हूं, क्या करूं। बहुत रेयर केस होते थे डिवोर्स के, अब वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश में भी ये समस्या बहुत बढ़ा दी है। ईगो, ज्यादा सोचना, आई एम राइट, सब ध्यान देंगे इस बात पर, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा है, दोनों यही तो सोच रहे हैं आई एम राइट, और जब तक एक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, परिवारों में समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मेरे पास ऐसे युवक भी आते हैं जिनकी आयु 30-35 साल हो गई है, जो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, मैं पूछता हूँ क्या हुआ तुमको, बता देते हैं अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग किए हुए, जब से हो संभाली माँ बाप को लड़ते ही देखा है, कभी प्यार नहीं मिला, कभी हमारे सिर पे प्यार भरा हाथ नहीं फेरा गया, क्योंकि दोनों ही इरिटेट रहते थे, तो आप समझ लें जिस परिवार में खुशी नहीं है, जहां शांति प्रेम नहीं है, वहां समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए अपने को झुकाना पड़े, थोड़ा सा सहन करना पड़े। सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने अपने घरों में प्यार का माहौल, खुशी का माहौल तैयार करें। इस समस्या का भी समाधान राजयोग हमें सिखाता है, जब हम सर्वशक्तिवान से जुड़ते हैं। आप यहां सीख रहे हैं राजयोग। राजयोग कोई हठ क्रिया नहीं, कोई श्वासों की क्रिया नहीं, कोई ये योगासन नहीं, सर्वशक्तिवान से जुड़ना, उससे शक्तियां लेना, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां, विल पावर, मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं और हम सहज भाव से जीवन जीने लगते हैं। बहुत जरूरी है आप सीख कर जाएं यहां से। कई लोग इजी गोइंग नेचर वाले होंगे आप में से, जो नहीं है वो अपनी नेचर को इजी नेचर बनाएं। और मैं दूसरा महावाक्य सुना दूं, भगवान का महावाक्य, तुम इजी होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी इजीली समाप्त हो जाएंगी। जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है तो छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। मैंने शिव बाबा के महावाक्यों से एक बहुत सुंदर बात सीख ली थी बहुत साल पहले, जो बहुत काम आई और मेरा लक्ष्य होता है वो सिखा दें सबको। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। बोलो राइट है या नहीं। और दूसरी बात थी इससे जुड़ी हुई, जो मैंने पहले प्रश्न किया था, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। तो मनुष्य अपनी गलतियों से समस्याएं क्रिएट करता है और अपनी शक्तिशाली मन की स्थिति से वो समस्याओं को समाप्त भी कर लेता है। छोटा सा उदाहरण और एक, एक व्यक्ति आपको इंसल्टिंग बोल बोल देता है, आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा व्यक्ति है जिसको इंसल्टिंग बोल बोलते ही उसे गुस्सा आ जाता है सुनते ही, और वो लड़ाई शुरू कर देता है और बड़े बड़े केस हो जाते हैं आजकल। समस्या विकराल हो गई, एवरेस्ट जैसी हो गई। तो हम सभी थोड़े सहनशील बनेंगे, थोड़े अपने को पावरफुल भी बनाएंगे और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके ही चलेंगे। सभी इस विचार पर, इस धारणा पर बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उन्हें एक्सेप्ट करके अपने चित्त को शांत करें। आप पाएंगे अनुभव करना जीवन में, मन के शांत होते ही समस्याएं शांत हो जाती हैं। बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट हमने कराए लोगों से, मन शांत, समस्याएं शांत। शरीर की समस्याएं भी आती हैं, काम धंधों में समस्याएं भी आती हैं, परिवारों में समस्याएं भी आती हैं, और जैसे कल हमने चर्चा की थी, मानसिक रूप से भी बहुत समस्याएं संसार में बढ़ रही हैं। और आगे चिंतन करेंगे, मनुष्य की एक आदत हो गई है कि वो समस्याओं का चिंतन ज्यादा करता है, उसके सॉल्यूशन का चिंतन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि चिंतन की दिशा है वो एक ही दिशा में जाएगा। हम समस्याओं के कारण पर चिंतन कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है, उसको हटाएंगे, लेकिन हम ज्यादा सोच रहे हैं, समाधान हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये गलती हो रही है। हर समस्या का समाधान होता है। जैसे कितना भी बड़ा ताला बना हो, उसकी चाबी तो होगी या नहीं, हर समस्या का समाधान है। उस समाधान को हम ढूंढ लें। देखिए आज संसार में जो कुछ चलता है सभी डिपार्टमेंट्स में चलता है, कहीं ना कहीं लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लेग पुलिंग करेंगे, जो आपके विकास के दरवाजों को बंद करना चाहेंगे। लोग हैं, कमी नहीं है ऐसे लोगों के। हमें याद रखना है अगर कोई हमारा एक द्वार बंद कर दे आगे बढ़ने का, दूसरे द्वार हैं। हम इस बात से परेशान हो जाते हैं ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये हमारा गुड फ्रेंड था, इसने हमारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हम उस बात का ज्यादा चिंतन न करके दूसरा द्वार कहाँ है वो ढूंढ लें। हो सकता है उससे भी सुंदर मार्ग हमें मिल जाए। ये बहुत समझने की बात है और अनुभव करने की बात है। कभी कभी एक द्वार बंद होता है, सुंदर द्वार हमें मिल जाता है, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में हम सभी को एक बात सिखाई गई है, प्रयोग करके देखेंगे। ये संसार का खेल कल्याणकारी है, इसमें हर घटना कल्याणकारी है। आप कहेंगे हम चलते चलते गिर गए, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया, ये कल्याणकारी कैसे हुआ? मनुष्य सोचेगा ना, बुद्धिमान है मनुष्य। लेकिन अगर हम कर्मों की गुह्य गति को जान लें तो हमें पता चलेगा कि बात थोड़े में ही खत्म हो गई, 15 दिन में ही हमारा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, हम फिर से लाइफ को एंजॉय करेंगे। घटना तो बड़ी होने वाली थी, टल गई है। ये बहुत जगह अनुभव हुए। एक घटना सुना देता हूं, बॉम्बे की है। हमारे ही 5-7 लोग एक प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारा सामान लेकर जा रहे थे। उन दिनों कारों का युग नहीं था, बस में जा रहे थे। बस 1 मिनट बचा था, बस छूट गई। वो पुकारते भी रहे, रोको रोको रोको, किसने सुना नहीं, बस निकल गई। बड़े परेशान हुए। भगवान ने कहा सब कुछ कल्याणकारी है, हम तो लेट हो गए, कल्याण कहाँ हुआ, परेशान हो गए। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद दूसरी बस आई, वो बैठ गए। मन मार करके देखा लेट हो गई, वहाँ हमारा लोग इंतजार कर रहे हैं, हम देर से पहुंचेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो 10-15 किलोमीटर ही चले थे, उन्होंने देखा उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, 5-7 लोग घायल हुए, भैंस आ गई थी आगे। तब उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, वाह प्रभु तेरी लीला परम्पार, हमें बचा लिया आज। हम हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा करें, बहुत कुछ कल्याणकारी है इस खेल में। दूसरी बात पर आ जाऊं, तीसरी बात, बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी पैदा हो रही है। ये सीक्रेट है, ये कर्मों की गुह्य गति है। जैसे एक परिवार आया अभी मेरे पास, बड़े थे वो, उनको एक पोतरे ने जन्म लिया, 10 साल हो गए थे, जन्म हुआ नहीं था किसी बच्चे का। बहुत भगवान को पुकारते थे, एक बच्चा तो दे दो, एक बच्चे ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही आप हैरान होंगे, कई केस मेरे पास बच्चों के जन्म के बारे में आते हैं। ये लंदन का केस है, वो इतना रोता था कि 5-7 दिन में घर का वातावरण ऐसे खतरनाक होने लगा, डर लगने लगा घर में सभी को। मेरे को बताया कि क्या हो रहा है, हमने तो बहुत इंतजार की थी एक अच्छा बच्चा हमें मिल जाए, ये क्या हो गया है? कर्मों की गति है ये। अब घर में बच्चा भी आ गया, फिर हमने उनको कुछ विधि सिखाई, 3 मास लगे उस बच्चे को शांत होने में, मुस्कुराना सीखने में, और समय लग गया। तो ये पूर्व जन्मों के जो कर्म बंधन हैं, ये भी अनेक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। कल भी मैंने बताया था, बेंगलोर में मैं था, दूसरी घटना सुन लें। एक सिविल सर्जन बहन, लेडी डॉक्टर, उसने ज्ञान लिया था, ये योग सीखा था एक साल से, पूछने आई कि हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसी लड़की आई है 5 साल की, जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हम सभी डॉक्टर्स, कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं और भी बहुत हैं, कहा विचार कर रहे हैं, हमारी मीटिंग हो रही है कि 5 साल के बच्चे ने क्या गलती कर दी, खान पान में गलती तो हो नहीं सकती, और क्या हुआ, अभी तो उसका सोचना भी कुछ नहीं है, जो इस बच्चे को कैंसर हो गया है। अब 5 साल के को तो पकड़ में आया, हो सकता है 4 साल की आयु से ही चल रहा हो। उनके किसी की मेडिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने उनको एक रहस्य बताया, आपके सामने भी है बहुत बड़ा सीक्रेट। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, बॉडी ऑफ एनर्जी, बॉडी ऑफ लाइट। जो कुछ इस शरीर में रहता है वो सूक्ष्म शरीर में भी प्रिंट होता रहता है। एक उदाहरण देता हूं इसके बारे में। एक बच्चे ने अपनी पूर्व जन्म की घटना सुनाई, उसको याद आ रहा था पूर्व जन्म। उसके यहां सिर पर थोड़ा सा गड्ढा था, हल्का सा, तो उसने बताया, ये प्रिंट हुई थी किताब में, एक किताब लिखी एक व्यक्ति ने, जिसमें पूर्व जन्मों की कहानियां बच्चों ने जो सुनाई है उसका विवरण है। तो उसने वो बोलने लगा कि फलाने व्यक्ति ने मेरे सिर पर लाठी मारी थी, उससे मेरी मृत्यु हुई थी। बस थोड़ा सा बोल के उसकी मेमोरी गायब हो गई वो पुरानी। तो डॉक्टर्स आए, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, तो कहा ये जो निशान है ये उसका ही है। तो जो कुछ स्थूल बॉडी में होता है, फिजिकल बॉडी में होता है, वो सटल बॉडी में भी आ जाता है। तो हमने उनको बताया कि इसको पूर्व जन्म में कैंसर था, उससे इसकी मृत्यु हुई है। तो कैंसर के वायरस सूक्ष्म शरीर में, इस बॉडी ऑफ एनर्जी में भी आ गए हैं। जो उसने गर्भ से दूसरा जन्म लिया वो उस शरीर में उभरने लगे, और 5 साल में ही ये उभर के प्रकट हो गए हैं, और इसको आपने कैंसर डिटेक्ट कर दिया है। ये बहुत सूक्ष्म गति है। तो कुछ समस्याएं पूर्व जन्मों से मनुष्य लेकर आ रहा है, अब उसका हम क्या करें? तो उसका इलाज है, आप यहां सीख रहे हैं और सीख लेना, ऑलमाइटी से, जो सुप्रीम बीइंग है, उसका एक दूसरा नाम भी है सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे यदि हम कनेक्ट होंगे तो हमें जो पावरफुल एनर्जी मिलेगी, उससे पास्ट जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है। इसको कहते हैं योग अग्नि। योग अग्नि से पूर्व जन्मों के पाप कर्म, बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस योग से हमें बहुत फायदा होगा। इसमें एक छोटी सी बात और कह दूं, हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, यहां ये सिखाया जाता है, हमें उससे कुछ मांगना नहीं है, वो हमारा परम पिता है। मांगने वाले को तो बेगर कहा जाता है ना, और मांगने वाले को हम कितना देते हैं, मुट्ठी भर। आजकल 10 रुपए देने का रिवाज हो गया है, कोई मांगने आएगा 10 रुपए देते हैं, अगर आपने 1 रुपया दे दिया तो आपके मुंह पे मार के जाएगा, लो अपना 1 रुपया संभालो। तो भगवान हमारा परम पिता है, इट मीन्स वो हमारा है। जोड़ दें आप अपने को उससे, वो हमारा है, तो उसका जो कुछ है वो भी हमारा है। इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे आप, यही सत्य है, तो उस पर हमारा अधिकार है। इस अधिकार को यूज करेंगे आप अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए। इससे पहले एक छोटी सी बात और कह दूं, आप सब राजयोग सीख रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उससे हमारा एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हो जाता है, उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी हमें आने लगती है। अगर हम एनर्जेटिक हैं तो हमारी एनर्जी उसको जाने लगेगी। आपने ज्ञान सरोवर में आज एक सुंदर फूल देखा है कहीं, अब यहां बैठकर आपको याद आ गया, विजुअलाइजेशन होने लगा, कितना सुंदर फूल था, आप उससे जुड़ गए, आपके वाइब्रेशंस उस फूल को पहुंचने लगे। हम यहां हॉल में बैठे हैं, आकाश में सूरज चमक रहा है, हमें दिख नहीं रहा, बादल भी हैं, आप सूरज को विजुअलाइज करो, आप उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी आपको आने लगी। ऐसे ही ऑलमाइटी निराकार परमात्मा को याद करो, उससे हम जुड़ जाएंगे, उसकी माइट, उसकी शक्तियां, उसकी पावरफुल एनर्जी हमें आने लगेगी। न हम उससे शांति मांगेंगे, न उससे शक्तियां मांगेंगे, हम उससे जुड़ेंगे तो उसका सब कुछ हमें मिलने लगेगा। समस्याओं के निदान में इसका आप यूज करेंगे। मैंने ये प्रयोग भी बहुत कराए हैं, आप भी करके देख लें, अपने अनुभवों में ले आएं। रात को सोने से पहले या सवेरे उठते ही भगवान के नाम एक पत्र लिख दो, आप हमारे परम पिता हो, आप हमारे हो, जीवन में ये बड़ी समस्या आ गई है, ठीक करो, प्रार्थना नहीं, अधिकार, ठीक करो, मदद करो हमारी। आप देखेंगे आपका मन भी हल्का हो जाएगा, जब आप सवेरे उठेंगे आपका मन बहुत लाइट होगा, आपको दिखाई देगा ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, गई की गई, आप उस समस्या के चिंतन से भारी नहीं होंगे और परमात्म सहयोग बहुत मिल जाएगा। ये एक के नहीं, लाख अनुभव हैं लोगों के। मैं तो ये टीवी पे भी बहुत सिखाया, जब मैं लिखता था, लिख कर बहुतों को सिखाया, क्लासेज में सिखाया, जब टीवी का जमाना नहीं था। लेटर टू गॉड एंड यू कैन मेक हिम योर सुप्रीम फ्रेंड, गुड फ्रेंड, ये भगवान से नया नाता है, आप उसको अपना सच्चा मित्र बना लो, फ्रेंड बना लो, और वो फ्रेंड आपकी आवश्यकता में आपको मदद करेगा। ए फ्रेंड इन डीड इज ए फ्रेंड इन नीड, है ना ऐसी कुछ कहावत, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, वो सच्ची मित्रता निभाता है। मैं तो बहुत सारे अनुभव किए हैं इसके, बहुत सारे, मुझे यहां रह के और समस्याएं तो नहीं, थोड़ी सी शारीरिक बीमारियों को फेस करना पड़ा, और मैं हमेशा कहता हूं मेरे सुप्रीम सर्जन आप हो, अब मुझे ठीक करो, किसी को भेजो या आप कुछ भेजो और मुझे ठीक करो, और इसके मेरे पास कम से कम 100 अनुभव तो होंगे ही, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। परमात्म सहयोग हमें मिल जाता है, वो हमारा हो जाता है और समस्याएं हमारे लिए खेल भी बन जाती हैं। तो पहली बात, समस्याओं से घबराएंगे नहीं, जीवन है तो चैलेंजेज हैं। कलयुग के ऐसे समय में हम पहुंच गए हैं जहां हरेक का जीवन भिन्न भिन्न तरह के चैलेंजेज से भरता जा रहा है, लेकिन हम, जैसे आप एक बात सुनते होंगे, चुनौतियों को अवसरों में बदल दो, चुनौती आती है उससे कुछ सीख लें, चैलेंजेज हमारे विवेक शक्ति को, हमारे विजडम को जागृत करेंगे, उनसे कुछ सीख कर नई चीजों से अपनी विजडम को भरपूर कर दें, तो समस्याओं में हम बहुत पावरफुल बनेंगे, कमजोर नहीं बनेंगे। मैं तो अपने जीवन में लक्ष्य रखा था, लिख दिया था अपने पास, विघ्न और समस्याएं तुम्हें पावरफुल बनाएंगी, कमजोर नहीं। तो मैं ये सोचता था कोई बात आई है उससे हमें और पावरफुल बन जाना है, हर बात से कुछ ना कुछ सीख लेना है, अपने में कुछ चेंज ले आनी है, ताकि जिन कारणों से समस्याएं आ रही हैं जीवन में उनका हम निवारण कर लें तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो अपने सुंदर भविष्य की ओर देखेंगे सभी। कल मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की बात कही थी, आज उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं और सभी उसको कर लेंगे, मजा आएगा जिंदगी में। सवेरे उठते ही अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करना और एक सुंदर संकल्प करना, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। ये प्रयोग हमने अपनी पहली जो मीटिंग थी जिसमें मैंने कहा 300 लोग थे उसमें कराए थे। सभी सोचेंगे मेरा आज का दिन ऐसा होगा। किसी ने 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, किसी ने 3 पॉइंट बनाया, किसी ने 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज कदम कदम पर सफलता मेरे चरण चूमेगी, आज सारा दिन पॉजिटिविटी में बीतेगा, आज सारा दिन मैं बहुत एनर्जेटिक रहूंगी, आज मेरी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। आप 1 पॉइंट सोच सकते हैं, 2 पॉइंट ले सकते हैं, रोज करनी होती है किसी बात को, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। और जितने जितने हम माइंडफुल होते जाएंगे, हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी राजयोग से, उतनी ही सफलता हमें जल्दी मिलेंगी। तो हर समस्या के बारे में ये सोच के रखना, आई है सो जाएगी। सब दिन एक समान नहीं होते हैं, गति है इस खेल में, आ रही है बातें जा रही हैं, जाने दो। ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए बातों से, जितने लाइट रहेंगे उतना सब कुछ लाइटली समाप्त हो जाएगा। बस मेरी शुभ भावनाएं हैं आप सभी का जीवन समस्याओं से मुक्त हो, आप जीवन को एंजॉय करें और अपने परमपिता से जुड़कर उसे ऐसा साथी बना लें कि आपको लगे जीवन की यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सॉरी भी कहता हूं, मुझे तो अचानक कहा कि आ जाओ नीचे बरसात हो रही, सीलू बहन आ नहीं रही है, तो मैं आपसे छुट्टी चाहूंगा तो मैं तो अभी आया हूँ। थैंक यू वेरी मच, मुझे अवसर दिया। ओम शांति।
आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही सरल और गुह्य रीति से हमें युक्तियां बताएं, क्योंकि रेजिलियंस थोड़ा समय भी लेता है, अंदर की शक्ति भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए और परमात्मा से हमें जरूर सहयोग भी चाहिए। तो जैसे भाई जी ने कहा, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो ये हमारा लाइफ का स्लोगन बन जाए तो अच्छा ही होगा और सफल ही होगा। जैसे युक्ति बताया, अलग अलग सामान लेकर के हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। फिर से हम तहे दिल से आदरणीय सूरज भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हुए अभी हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर राजाराव पगड़ीपल्ली हैदराबाद से, चेयरमैन ऑफ विश्व ह्यूमैनिटी यूनाइटेड इंटरनेशनल रॉयल काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना कला परिषद, चेयरमैन ग्लोबल चाइल्ड मिशन इंडिया, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड पीस कमीशन और अनेक स्टेट गवर्नमेंट से सोसाइटी समाज को आगे बढ़ाने में इनको बहुत सारे फेलिसिटेशंस मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हम निमंत्रण करते हैं डॉक्टर राजाराव पगड़ीपल्ली हैदराबाद से, वो अब इस विषय पर प्रकाश डाले।
Thank you, Excellency. Thank you for the warm welcome. I am honored and blessed to be part of this wonderful program. First of all, I want to say heartfelt thanks to His Excellency Rajyogi B.K. Surajji for his wonderful narration on the beautiful topic that we have today. At time, I felt I was energized by his aura during his speech. Thank you, Excellency Rajayogi B.K. Surajji, for the wonderful narration on this particular topic, resilience. I wanted to thank Professor Dr. Devi Prasad Tiwariji, who is the former Vice Chancellor of Veer Kunwar Singh University, Bihar. Thank you for joining us, sir. And I want to thank Her Excellency Sister B.K. Shashi Ji and Coordinator Sister B.K. Chaya Ji. I thank each and everyone who ever joined here. I have 10 minutes of time. I will try to complete it within 9 minutes. Resilience. This is what need of the hour, because in our lives, so many challenges. There are many situations that causes a lot of stress. The stress which has the capacity even to kill human beings. So without resilience, we can't survive. So we have a wonderful topic, because we are in a century in post-pandemic era. If you just imagine the year of 2020, when the globe was hit by pandemic, we were all saved by our resilience. So which means, knowingly or unknowingly, we have the capability of this resilience. But how many are able to cope up when some misfortunate things happen in their personal lives? As human beings, we have personal aspirations, aims, ambitions, targets. But you know, what happens once we fail in our journey? We cannot cope up with the situation. We cannot cope up with the situation. And there are many people who commit suicide if some failure happens in their life. So this has to be seriously taken, because we can see in media, there are many such incidents are happening. So this resilience is the need of the hour to face whatever the challenges that comes in our life. Before explaining this resilience, let me start with my life and the situation, the resilience that happened in my life. In 2007, I completed my PhD in spirituality. So my aim was to preach the message of peace all over the globe at the time in 2007. But when I have my list of aspirations, targets, aims, ambitions, whatever I kept at the time, there was no single success. So if I recall those targets or goals, whatever I kept at that point in 2007 in my life as an youngster, of course today they might be tiny, but in those days they could kill. Such was the capacity. But instead of harming myself on those days, I decided, instead of passing the message of peace to the world, let me do one job. So I joined as an associate professor. But you know, after becoming an associate professor, I have to teach the same subject, the resilience. Because I was a lecturer in reputed engineering. I worked as a lecturer in reputed engineering colleges and MBA colleges. So where we teach skills, empowering students, motivation, personality development. So there comes also the same message, empowering students. Resilience, the same. Adaptability, adjustment, flexibility. These are the century skills. So, the life is going like that. In 2017, there are some incidents that made me to realize this is not what I destined for. This is not what I destined for. My destiny is different, because I destined for something that I dreamt of when I was a child. So, of course, there are many misfortune incidents in everyone's life. But we have to cope up. Then we started an organization in 2016 and 17. Then we started our work. And the first day we invited some eminent people to address the opening. And after listening to our aims and objectives, they told us one thing. You are saying that meeting ministers and chief minister, you are saying that. But it won't happen. You even cannot meet an MLA's PA. So why are you aspirating for so much bigger things in your life? So it won't be your cup of tea. Just ignore all these things and live the life as you are living. So that was said in 2016, and I think, one second. That was in 2019. Our campaign started, our campaign successfully launched in 2016 for world peace. Then in 3 years of time, there are many factors that are in our path to stop whatever we have planned for passing the message of peace to our nation. We did Save Farmers campaign. We did Vision India campaign with a theme of peace. Finally, in 2019, we were invited by President of India, Sri Ramnath Kovind. Before that, we met chief ministers, central ministers, governors. We were invited and we were asked to present what we are doing. So, and we have given representations regarding this peace. And in after the 2020, when the globe was hit by pandemic, in 2019, after meeting President of India, we thought of that giving a pause to our campaigns. But 2020, that pandemic said that there is still we are supposed to do. So, what happened is, there was some struggle in Georgia, the vulnerable people are facing. Immediately, we communicated with the Prime Minister of that Georgia country, and within a week or 10 days, we received a response from them thanking that they helped the people, those who are struggling during the times of pandemic. In the same way, we have sent a petition to the Home Minister of India, our Amit Shah Ji. Within 2 days, through the grievance cell, within 2 days, we received a message from grievance cell and phone call saying that they are going to solve the problem whatever the migrant workers are facing. So even we received a message from them. So nearly 50 nations, presidents and prime ministers endorsed us whatever we are doing. By 2023, our world peace campaigns and summits were endorsed by nearly 100 universities. Why? Because we have our hopes, we have our aspirations, we have our own targets, but they are very minute. Before 2007, I have very minute targets, very minute aspirations, very minute ambitions. Even meeting an MLA is a gift for me in those days. Such minute ambitions, but man proposes and God disposes. He has his separate willing for about each and every individual. We ignore that. So, that I realized in 2017, and I get back to my work and I started doing this. And I received many communications saying that they are getting benefit through our peace campaigns. So, why I am trying to tell you this? Because once we set a path, when we have a path, we need to have resilience. Because life is not what we think of. It's like a ocean. We cannot cross this ocean without tears, without suffering, without sadness. Because it's a part of life which we have to accept. I happened to study the life of our great scientist Abdul Kalam Ji, our former president. He applied for the job of a pilot. And a helicopter pilot, but you believe it or not, he was rejected for the post of a pilot of an helicopter in his first interview. But you know, in the second interview, he was selected for the post of a rocket engineer. So once you get a failure, once we get a failure or once we get an obstacle in our path, we have to think that we were destined for something else. Because God has His unique idea, unique way for each and every individual. We teach communication skills for engineering students. 80% of students would fail the first question. Say something about yourself. The first question an interviewer asks is, say something about yourself. Introduce yourself. But we are experts at speaking about film actors, Bollywood celebrities, and any other politicians. But when a simple question, say something about yourself, he can say his name, he can say his father name, then he will find about sentences. Because we never ever focus on what are the unique qualities we are blessed with. So, we have to nurture our inner self. Without nurturing our inner self, because we believe it or not, we have to accept every person has hidden self. We have our own secrets. If you have hidden self means you have secrets. If you say, no, I don't have any secrets, you are lying. Because having secrets in one's own life, it's his hidden self, it's good. We have our own secrets. But you are not supposed to carry the secrets of others. Some people will come and say, this happened there, this happened there. They gossip the things and you keep all these secrets in your mind, which causes a lot of stress. You cannot focus on anything. Throw it away. If someone comes and says some gossip, throw it away. You should not burden your hidden self with all those gossips. Have secrets till you are feeling comfortable to carry them. But if these hidden self, if it expands beyond the limit, it causes pressure on us and it kills people due to cardiac arrest or whatever it may be. We can see some healthy people who are dying, who are collapsing because of the stress. So this hidden self causes stress. We have to know what is the factor that we are going into this one. And second thing is, everyone has blind self. We have to recognize that we have blind self. Because blind self, it represents ignorance. We have to accept it. We have to minimize our ignorance by taking feedback from our teachers, parents, family members. So, when someone gives us feedback, we don't accept it. We take it as negativity, in negative way. But take feedback as a positive, because constructive criticism always welcomed. So you can take feedback from your family members, teachers, so that we can minimize where we are going wrong. So blind self should be eradicated from us. It should be minimized. We have to find out whatever the ignorance that we have. You believe it or not, in Telangana, in Andhra Pradesh, Telugu state, one person, because of one person's mistake, the government lost 5 years of ruling capacity. I don't want to mention that party name, but I want to mention that what happened, the incident. It is an example for blind self. That minister said, I studied physics in BCom. One minister in his interview, he said that, I studied physics in BCom. This is the symbol of an ignorance, and the people started publishing books even on ignorance with the name physics in BCom. If you Google it, physics in BCom on YouTube, you can find it. Because ignorance may look simple, but it collapsed an entire government. Because people thought that if one ministry is like that, entire system will be like that, and they have given. But that is what happened in that state. So, ignorance has the capacity to kill us. That may be professionally or personally. So, it may not physically, but somewhere it affects us. So, we have to find out where are our blind spots, and we have to work it out. Then comes to the next one, unknown self. Everyone has his unknown self. We don't know what we are till our time comes. You don't know who you are till your time comes. So wait for till God calls you. Because the time comes. When time comes, we'll show to the world what we are. So this is very important to know about our unknown self. That is only possible when we are with God. When we meditate, when we go into our personal odyssey, then we find out who we are and what we are, what we are destined for. So there are 10 principles which are already adopted by yes. I'm not going to explain them because we don't have much time. But already that are there in our BK family. First of all, we have to understand the self. Without understanding yourself, you cannot conquer the world. First of all, know who you are. Then go into meditation. So this is the life's blessing. Because BK family always focus on meditation. And within 3 days of my journey into BK family, really I am feeling that I am somewhere in Manas Sarovar or Kailash. That is the feeling that I have been nurturing here. Really, we are honored to have that blessing, meditative reflection. That's very important to imbibe into our personal lives. Then we have to accept the things. If it may be failure, we have to accept. It may be someone we lose in our family, we have to accept and let it go. Otherwise, we can't. So, then spiritual wisdom. It is a big subject, but the spiritual wisdom is very important because whatever invisible that has more power than which is visible. So, let's focus on that spiritual wisdom. And we have to focus on service and compassion because in everyone's face here in BK family, I can see that. We can feel that. Service and compassion. That we have to inculcate into us. Then gratitude, satisfaction. These are the very important things to be imbibed into in our personal lives. Silence, stillness. They are very much crucial because sometimes when now we are going for silent meditation, really it's giving us energy. It is showing the path to the sky, somewhere into the realms of other beings, other universe. So we have to stay in the present moment. That is very important. And we have to be spiritually disciplined. That's very important. We have to seek guidance from our elders. We have our sisters, Didis. Then positive affirmations. Be positive. The world is giving all negative messages and they are corrupting. If you open any social media, Facebook, Instagram, whatever it may be, not the positivity but negativity is getting much of the place and they are corrupting our minds. We have to get rid of it. So it's very important. Then detached involvement. We should not be so attached to everything whatever we say because it kills us psychologically. So do your job responsibly and be detached from it. Detachment means not escaping from responsibility. Do your responsibility. But don't overly attach with that, each and everything that we see. Because it will hamper our spiritual destination. So, God will show us the right path at right time. We need to have resilience by acquiring all the, whatever our BK family is administering, all these 10 skills, we can overcome all burdens, all challenges that comes in our path. Thank you so much.
Thank you, brother. अभी हम चलते हैं, जैसे resilience की बात हो रही है, तो हम जैसे आदरणीय सूरज मैंने कहा, शक्तियों का विकास, फिर कम सोचना और हर सोच हर संकल्प को शक्तिशाली बनाना, वर्तमान में रहना और अपने को जैसे अपने स्वरूप में स्थित करना, परमात्मा की याद, इस याद की यात्रा में हमें ले जा रहे हैं बीके शशि दीदी जी, जो एमपी सतना से आए हैं और आप देखते हैं कितने बहुत ही सुव्यवस्थित से स्टेज संभाले हैं. इनका पूरा ग्रुप है, बहुत सालों से कर रहे हैं. 1995 से वो समर्पित रूप से सतना सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. तो 21 गीता पाठशालाएं चलाते हैं और स्पार्क विंग के भोपाल जोन के कोऑर्डिनेटर हैं. और इनका बहुत सुंदर एक व्यक्तिगत अनुभव भी है जो शायद मेडिटेशन के द्वारा वो हमें भी अनुभव कराएंगे। तो हम अभी शिष्य दीदी से निवेदन करते हैं कि हमें याद की यात्रा पर ले जाएं।
ओम शांति। अभी आप सभी कई स्थानों पर गए होंगे जहां किसी न किसी से मुलाकात की होगी। ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आपने अपने आप से मुलाकात की है। सभी ने की है अपने आप से मुलाकात। Who am I? ये आंसर मिल गया है। तो हम कौन और हमारा कौन, जो वास्तव में हमारा है, उसकी पहचान यहाँ पर आप सभी को मिल चुकी है। पक्का? तो हम और हमारा, ठीक है, हमने दोनों को जान लिया। आज दिन तक जिसे हम अपना समझ रहे थे, अपने आप से पूछें क्या वो हमारे अपने थे या हैं या होंगे। तो तीसरा नेत्र खुलने के लिए भगवान स्वयं इस धारा पर आते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं, आदरणीय भाई साहब को सुना कि चैलेंजेस तो आते हैं और दुख में सभी लोग दुखी होते हैं ना, और सुख में सभी सुखी होते हैं, लेकिन महान वो है जो दुख में भी दुखी नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक बात मुझे याद आ रही है कि जीवन एक संग्राम है योगी, हिम्मत से न डरना। जीवन एक संग्राम है योगी, हिम्मत से न डरना। भव सागर में भंवर बिछी है, हंस हंस पार उतरना। ये कभी नहीं सोचना कि हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं आते तो बहुत अच्छा होता है। चैलेंजेस आते हैं तो हमारी शक्तियों का विकास होता है और उसकी हमको पहचान होती है। तो जितना परिस्थितियों में हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना हम समस्याओं को अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे, जिसके उदाहरण हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में भरे पड़े हैं और हम सब लोग पढ़ते भी हैं, पर अपने जीवन में उसको व्यवहारिक जगत में लाते नहीं हैं। बस यही कारण है कि समस्या हम पर हावी हो जाती है। समस्या हम पर हावी हो जाती है। अभी क्या करना है? समस्या पर हम हावी होंगे, समस्या हम पर हावी नहीं होगी। अभी गणेश पूजन आ रहा है, उसकी निशानी बताते हैं ना, चूहे की सवारी में गणेश जी को दिखाया। तो समस्याओं पर हम सवार हो जाएं, हम पर सवार समस्याएं ना हो, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यहां से सारी बात लेकर जाएंगे, ठीक है। मीरा को दिखाया, अगर भगवान पर निश्चय है, विश्वास है, तो विष भी अमृत बन जाता है, जो हमारे यहाँ इसका प्रमाण है। पता है ना मीरा के बारे में सभी को, कि मीरा को विष दिया गया था, लेकिन उनकी पॉजिटिव सोच ने और भगवान पर विश्वास ने उस विष को अमृत बना दिया। प्रहलाद के साथ कितनी घटनाएं घटी, कोई और नहीं था, उनके पिताजी थे, लेकिन वो पॉजिटिव रहे, भगवान मेरे साथ में है, जो कुछ भी होगा कल्याणकारी होगा। तो ये सब बातें पढ़ने और सुनने की बस नहीं है, हमको अपने जीवन में इनको धारण भी करना है। ठीक है, हम लोग रामायण भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अंगद जब रावण की लंका में गए सीता को वापस लाने के लिए, तो रावण से कहा कि आपकी लंका में तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, महाभट हैं, मेरे पैर को अगर उठा लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप श्री राम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और राम के बल पर उन्होंने उनकी सभा में अपना पैर जमा दिया, अचल अडोल स्थिति का प्रमाण अंगद। ठीक है, तो सिर्फ अंगद को ये करना है कि हमारे सामने जो चैलेंज आएंगे हमको भी वैसा करना है। तो ये उदाहरण क्यों रखे गए हैं, हमको अपने जीवन में धारण करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएंगे और फोकस करेंगे, जो हमें पहचान मिली है उस रूप को इमर्ज करेंगे और उसके साथ ही हम उस परम धाम की यात्रा पर जाएंगे। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे, अपने आप को ढीला छोड़ेंगे। ओपन योर हाफ आई। ठीक है, हम विजुलाइज करेंगे जो शब्द मिलेंगे। ओम शांति। इस पांच तत्व के शरीर को चलाने वाले मैं चैतन्य सत्ता, दिव्य शक्ति, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इस रंग मंच पर अभिनय करने के लिए ये पांच तत्व का शरीर मुझे मिला हुआ है। ये साधन है, मैं आत्मा साधक हूं। मैं आत्मा अपने आप को सशक्त करने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर रही हूं। जिसका सोर्स जहां होता है उसका मुख उसी तरफ होता है। जैसे पानी को कितने भी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, लेकिन जब वो प्रवाहित होगा तो नीचे की ओर ही होगा। उसी तरह मुझ आत्मा का शक्तियों का स्रोत परम पिता परमात्मा है, जो चांद सितारों के पार रहते हैं। जब भी मुझे उसकी स्मृति आती है ऑटोमेटिक मेरा सिर ऊपर की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्रोत है वहां, वहां से ही मुझे शक्ति मिली है। परमात्मा सर्व गुणों के सागर है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। संपूर्ण है, सदा एक रस अवस्था में रहने वाले हैं। वर्तमान समय जब हम आत्माएं रंगमंच पर अभिनय करते करते अपनी शक्तियों को छीन कर देते हैं, और समस्याओं से घबराने लगते हैं, फेस करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तब उस परमात्मा को पुकारते हैं, हे भगवान, आप कहाँ हो, आप आइए, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हम उसके बहुत प्यारे बच्चे हैं। वो परम धाम से इस धरती पर हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आते हैं और हमारी आत्मा को सशक्त बनाते हैं। लेकिन अभी हम सभी अनुभव करें कि भक्ति के मध्य से वह एनर्जी जिसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट ऊर्जा भी कहते हैं, इस पांच तत्व के शरीर से निकलकर सभी देखेंगे अपने आप को कि सुंदर लाइट जो मैं हूं, जिसे अभी मेरी पहचान मिली है, मैं साधारण नहीं हूं, मैं तो परमात्मा की संतान हूं। ये बात विस्मृत हो जाने के कारण मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझने लगी थी। जैसे मुझे अभी मेरी पहचान मिली है, मेरे पिता की पहचान मिली है, उस सर्वशक्तिमान की, उस ऑलमाइटी की, मुझे मेरे घर की, मैं कहां से आई हूं, मन बुद्धि के नेत्रों से हम वहीं चल रहे हैं, तो सभी देखें कि ज्योति बिंदु आत्मा धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ऊपर की ओर जा रही है। पंच तत्व की दुनिया को पार करती हुई मैं आत्मा चांद सितारों के भी पार अपने घर परम धाम के निकट पहुंच रही हूं। सभी मन की आंखों से देखेंगे उस परम धाम को, जहां लाल सुनहरा प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मेरे परम पिता परमात्मा, जिसे गॉड ईश्वर अल्लाह है, न जाने कितने नामों से पुकारते हैं बच्चे, वो एक ही है और उसका निवास स्थान यही परम धाम है। हम सब आत्माएं भी लाइट के रूप में, ज्योति के रूप में यहीं के निवासी हैं। ये हमारा मूल निवास स्थान है। जहां हम अपने पिता के साथ ज्योति के रूप में रहते हैं, अभी अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति के अति निकट विराजमान हो गई। मुझे आत्मा ने उनका स्पर्श किया, मन की आंखों से इस सुखद अनुभव को अपने आत्मा में समा ले। जैसे मैं उनका स्पर्श करती हूँ, उनकी जो प्रॉपर्टी है, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी शक्ति ज्ञान, वो सब मुझ में समाहित हो रहा है। परमात्मा शक्तियों से संपन्न होकर परमात्मा गुणों से सुसज्जित होकर मैं आत्मा पुनः नीचे की ओर पंच तत्व की दुनिया की ओर चल पड़ी और धीरे धीरे इस दुनिया में पहुंचकर पंच तत्व के शरीर में पुनः प्रवेश कर चुकी है। और अब मैं अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास असीम शक्ति, सर्व गुणों का भंडार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शिशि दीदी का। तो अभी हम निवेदन करते हैं अपने ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि हमारे आदरणीय जो गेस्ट हैं सम्मान करें सौवर्णियर और प्रसाद के साथ। श्री डॉक्टर राजा राव पगड़ीपाली,
Thank you.
हम अपने इस टीम के इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत दूर से आए हैं और बहुत अच्छे विचार भी हम सबके समक्ष रखे। शशि दीदी का भी बहुत थैंक्स, आदरणीय सूरज भाई जी का भी बहुत थैंक्स, हम सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।